पर्वतशाही विष्णु हैं उनकी आराधना करो। तो पर्वतशाही से ये प्रार्थना करो, तावत भयम द्रविण देह सुहिन निमित्तम। किसी को भय किस लिए होता है? द्रविण माने धन, देह सुहित, ये लोग कभी नष्ट न हो जाए, धन नष्ट न हो जाए, हमारे पारिवारिक जन नष्ट न हो जाए, हमारा शरीर नष्ट न हो जाए, शरीर में कुछ रोग पीड़ा न हो जाए, इसलिए तो भय होता है ना। भय किस लिए? ये चीजें हमारी जो मिली हुई है ये नष्ट, हमारा संबंधी सगा, हमारा शरीर और जो लोग हैं ये सब नष्ट, धन नष्ट, गोधन न नष्ट हो जाए, और शक्ति जमीन न नष्ट हो जाए। तो द्रविण देह सुहित निमित्तम भय, इसके लिए भय होता है। शोक स्प्रिया परिभवो विपुलश्च लोभः, और शोक किसके लिए होता है? जब वो नष्ट हो जाता है ना, तो उनके लिए शोक होने लगता है, और यदि ये चीजें नहीं रहती हैं तो क्या होता है? लोभ होता है। लोग किस लिए? हमारे पास में धन नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, हमारे आत्मीय स्वजन नहीं है, हमारा लड़का नहीं है, इसलिए लोभ होता है। इसलिए लोभ माने लालसा, और वो यदि मिल गई तो उनके लिए भय, और यदि नष्ट हो गया तो उनके लिए स्प्रिया। स्प्रिया माने वही लोग। परिभव विपुलश्च लोभ, परिभव माने पराजित हो जाते हैं, मान अपमान हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस
विधि,
इसमें परमार्थी कुछ नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण जस, इसमें परमार्थी क्या है? कुछ नहीं, किंतु इसीलिए लोभ शोक स्प्रिहा, इसीलिए दुख कष्ट जो कुछ, इसीलिए ये चीज बस हट जाए, बस सुखी हो जाए, इसी के लिए विपुल लोभ होता है, स्प्रिया होती है, और इसी के लिए शोक होता है। ताम ये कब होता है, कब तक होता है? ये हट सकता है किंतु हटता नहीं है। कब तक? जावत मम इति असद अवग्रह आरती मूल, जो आरती का मूल है, आरती माने दुख का शोक का जो मूल है वो है मम अहम और मम, मैं और मेरा। जब तक मैं और मेरा रहता है इन वस्तुओं में, तब उसके लिए शोक स्प्रिया और लोभ होता है, और उसी के लिए वो दुख होता है। यही आरती का मूल ये है। यदि आरती का मूल ये मैं और मेरा हटा दो, मैं माने ये शरीर का मैं नहीं, ये जगत का कुछ मैं नहीं, मैं भगवान का दास और मेरा भगवान का जो कुछ है वो सब, ये सब सेवा के उपकरण है, इसके द्वारा हम सेवा, बस इतना ही। जीवन निर्वाह करने के लिए उसमें से प्रसाद स्वरूप कुछ दे, प्रसाद के रूप, संग्रह के रूप में नहीं। जामन्न ते अंग्रिय मभयम, अभय स्वरूप कौन है? हे अभय, अभय कौन है? भगवान है, उनके चरण कमल। जब तक कि लोग भगवान के चरणों में शरण नहीं ग्रहण कर लेते, आश्रय नहीं कर लेते, तब तक ये सब है मम और मैं, और मम और मैं में ही ये इसके प्रति स्प्रिया शोक और ये सब दूर हो जाएगा यदि भगवान के चरणों में शरण। इसलिए भजन करने की लालसा हो तो इनके प्रति गृहस्थ लोग भी जो रखे हैं उसके लिए आसक्ति काट कर, और त्यागी लोग जो हैं वो महाप्रभु जी के उपदेश को ग्रहण करके वैसे। द्रव्य देश सुहिन निमित्त शोक भय स्प्रिया पराभव आर लोभ अतिशय अमी ममया मूल असत आशय जत दिन नहे तो पाद पद्माश्रय। जब तक कि हम लोग उनके चरणों का आश्रय नहीं करते तब तक ये सब नहीं पाते। इसलिए भगवान के चरणों का यथार्थ रूप में आश्रय नहीं, तब हम लोगों ने आश्रय नहीं लिया। जैसे क्रम से कहते हैं भजन करने के लिए वैसे हम लोग नहीं करते। यदि करेंगे तो ये सब दूर होगा, जो कर रहे हैं उनका ये धीरे 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 दूर होगा। कृष्ण ही सर्वेश्वर ईश्वर है, उन्हीं के शरण में जाने पर मनुष्य सुखी हो सकता है। उनका आचरण करने से, उनका भजन करने से बाकी सब लोगों का भजन करना हो जाता है। एक घर में एक आश्रम में मान लिया 100 लोग हैं, एक आश्रम 100, एक व्यक्ति आया दाता कोई देने के लिए कुछ बांटने के, उसने कहा कि सब लोग आप लोग आ जाइए कुछ 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 कुछ। और एक दाता आया, उसने कहा जैसे गुरुजी कहाँ हैं, तो गुरुजी को लेकर के दिए। अब दोनों में कौन अच्छा है, अलग अलग बांटे वो अच्छा है अन्य कि एक साथ में दे दे। एक साथ में देने वाले का जो उद्देश्य है उसे तभी साबित होगा। सबको यथार्थ रूप में जैसा देना है वो सब माँ के हाथ में देने से सब बच्चों को मिलेगा, और बच्चों को देने से एक ही बच्चा हड़प लेगा। इसलिए कहते हैं कि भगवान की पूजा करने से सबकी पूजा करता है। उनके बलदेव जी की, नारायण की, नृसिंह भगवान की, 24 लीलावतार की, जितने देवता हैं, जितने जीव हैं, प्राणी हैं, सबकी सेवा करनी हो जाती है एक भगवान तस्मिन तुष्टे जगत। और उनको छोड़ करके एक एक को प्रसन्न करने जाओ वो नहीं, किंतु लोगों के दिमाग में यही चीज। इसलिए कहते हैं जथा तरुणु निशी चली तृतीयंत तत्स्कंद भूजो प्रसाद प्राणो पहार जथेन्द्रियाण तथा वसर बाहरण अच्छे। बुद्धि की निष्ठा निश्चयता होनी चाहिए। यदि ये निश्चय नहीं हुआ कि कृष्ण का भजन करने से ही सब देवताओं का भजन हो जाएगा, तब तक बुद्धि अभी स्थिर नहीं हुई। उसके लिए ये सब चीजों का जानना आवश्यक है। कृष्ण की पूजा करने से ही सबकी पूजा हो। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी को बताया, केवल मात्र कृष्ण का इस समय में स्मरण कीजिए, दूसरे दूसरे देवताओं का स्मरण और आश्रय लेने की जरूरत नहीं, बस कृष्ण का स्मरण की। वही स्वयं भगवान है, वही परम पुरुष है, वही सब कुछ है। इसलिए वहां पर बतलाते हुए उनके मन में शंका हुई कि कृष्ण का भजन करने से और देवता लोगों का या और सबकी उपासना कैसे हो जाएगी। जैसे यहां पर राधा कृष्ण और महाप्रभु गुरु जी नृसिंह भगवान गिरिराज इत्यादि सब बाल गोपाल हैं, अंततः 5-6 सालग्राम शिला हैं, कुछ ये गिरिराज जी की शिलाएं भी बहुत सी हैं, जगन्नाथ जी की भी मूर्ति है, बाल गोपाल जी भी खड़े हैं, नीचे में भी ये दोनों हैं। तो फिर कितना भोग की थाली चाहिए, अलग अलग कैसे होगा। एक कृष्ण के ही अर्पण करने से सबका हो जाएगा, पहले ये तो विश्वास होना चाहिए। इसलिए पहले बतलाया तो भी कुछ रह गया उनमें, तब फिर वो बतला रहे हैं जथा तरुण मूल निशी। जिस प्रकार से पेड़ की जड़ में पानी सींचने से तृप्यंती ततस्कंद भूजो पशाखा, उसका स्कंद एक पेड़ होता है, पेड़ से धड़ से दो निकलते हैं मोटे मोटे, ये तो हुआ भुजा दू, और उपशाखा उससे अब शाखाएं निकली सब, और उन शाखाओं से भी फिर अब प्रशाखा निकली। तो ये और पत्ते फूल जो कुछ है फल तक भी, वो नीचे जो पानी दिया गया उससे वो सभी का सेचन होकर के सभी हरे भरे स्वस्थ, पत्ते पत्ते तक में वो पानी पहुंच जाएगा। किंतु एक डाली में, एक पत्ते में, एक फल में एक फूल में पानी दो वह काम नहीं, बल्कि वो सड़ जाए। यदि कहो अच्छा हम पेड़ की जड़ में भी देंगे और पेड़ के को भी धो देंगे तो इसमें क्या हर्ज है? हर्ज है, हम लोग यहां पर धो देते हैं पत्तों को, सबको धूलोल जम जाती है, पेड़ की जड़ में भी पानी दिया ऊपर भी दे दिया, तो वैसा कर दें। कह जाए ऐसा मत करो। इसके लिए दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, प्राणो पहारच जथेन्द्रियाण। इस श्लोक के पहले चरण में जो वृक्ष की जो तुलना दी गई, वृक्ष में पानी देने के लिए देंगे, फिर पत्तों को धोने की भी जरूरत रह सकती है ऐसा संदेह होगा, उस संदेह को दूर करने के लिए कहते नहीं एकदम जड़ में ही पानी दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अर्थात तो भगवान की ही पूजा एकमात्र आराधना कृष्ण की ही करो, और सब देवता देवी और ये सब जरूरत नहीं। क्यों? तुमको भूख लगी है। प्राणोपहारच्च जथेन्द्रियाणाम, प्राण को उपहार दिया जाए, भोजन दिया जाए, मुख में भूख लगी है तो उसे समस्त इंद्रियों को बल मिलता है, ये बात ठीक है। और अंगुली को में बल लाने के लिए, हाथ में बल लाने के लिए, इसमें यदि कुछ भरना चाहो जो भर गए काट करके तो मरे। आंख में थोड़ा सा दूध डाल दो, घी डाल दो, बड़ो अच्छा, आंख को थोड़ा सा छेद कर दो और उसमें घी भर दो तो गया ना। भूख लगी है पेट में तो जहां भूख लगी है वहीं पर दो, पेट में थोड़ा सा पैर में जरूरत है, पैर नहीं चल रहे हैं तो पैर में लगा दो तो आदमी बन जाएगा। ऐसे भाई दूसरे दूसरे देवताओं में ये शक्ति सामर्थ्य नहीं है, किंतु ये कृष्ण में ये शक्ति सामर्थ्य है, उनकी पूजा करने से ही सबकी पूजा हो जाएगी। इसलिए निशंक चित्त से करो। यदि मैंने कृष्ण का पूजा किया, मैंने दुर्गा जी का पूजा नहीं किया, तो दुर्गा जी अप्रसन्न होकर के गड़बड़ कर देंगे, या और देवता लोग गड़बड़ कर देंगे, या रामचंद्र जी को मैंने छोड़ दिया कृष्ण का भजन करना आरंभ किया तो रामचंद्र जी भी गड़ जाएंगे। ऐसा मत सोचो, तत्व तो वो एक ही है और कृष्ण ही वो मूल है, इसलिए कृष्ण की सेवा करने से ही शक्ति हो जाती। इसलिए वो द्रौपदी जन्म जब अपने पांचों पांडवों की रक्षा के लिए कृष्ण को बुलाया, जो 60,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि जा रहे, तो कृष्ण ने आकर के बटलोई के अंदर में अपनी अंगुली से साग का एक तिनका निकाल करके मुख में दे करके पानी पी लिया। अब बोला जे तृप्तोष्मी, और हाथ फेरने लगे, सब विश्व ब्रह्मांड का पेट भर गया। ऋषि लोग भाग खड़े हुए, जाएंगे और खाएंगे नहीं तो अभी मारेगा भी। इसलिए तथैव सर्वा हरणम अच्युते किया, सर्व अरहणम, अरहणम माने पूजनीय, अच्युत इज्ञा, भगवान की अच्युत कृष्ण की पूजा करने से, आराधना करने से सबकी आराधना करनी हो जाती है। इस विषय को सोच करके निशंक चित्त से कोई भी संदेह मत रखो, भगवान की पूजा करो। हरिदेव सदा आराध सर्वदेवेर ईश्वर ईश्वर इतरे ब्रह्मरुद्राद्या न अवज्ञा कजाचन। जब भगवान की ही पूजा करने से सब हो जाता है कृष्ण की, तो और सब देवता देवी बेकार हैं ना, इनकी इनको कोई आदर देने की जरूरत नहीं, बेकार के बोगस हैं, ऐसा मत समझो। ये उन्हीं की शक्ति है और जगत का पालन पोषण करने के लिए भगवान उनमें शक्ति संचरित करके दे रखे हैं, वो पावर दे रखे हैं। जैसे चौकीदार है, गवर्नमेंट का सबसे छोटा फ्रैक्शन का वो इकाई है चौकीदार, यहीं से आरंभ होता। चौकीदार को तुमने यदि मार दिया या कोई गड़बड़ी की तो ये किसका अपमान हुआ?
सरकार।
गवर्नमेंट का था। एक सिपाही को तुम मार रहे हो, साधारण कांस्टेबल है, किंतु ये अपमान हो जाएगा गवर्नमेंट का। इसी तरह से समझो, वो इकाई सबसे छोटी इकाई ये है। इसलिए देवताओं को भी अवज्ञा मत करो। हरि रेव सदा आराध्य, हरि ही अर्थात कृष्ण ही सबके आराध्य हैं, ये बात ठीक है। और वही सर्व देवेश्वर ईश्वर और ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। इतरे दूसरे जो ब्रह्म रुद्र नार इंद्र वरुण जम कुबेर वो दोनों क्या है
नल कुबेर अश्विनी कुमार
अश्विनी कुमार ये सब देवता, ये सब दुर्गा हैं, काली हैं और सब देवता हैं। किसी की अवज्ञा मत करो। उसको यदि एक चींटी को सम्मान दे सकते हो तो उनको भी सम्मान देने में क्या है। किंतु पूजा करो किसकी, आराधना करो कृष्ण की, उन्हीं की ये सब वैभव हैं, शक्तियां विभू हैं, विभूषा वैभव है। इसलिए किसी की अवज्ञा मत करो, किंतु पूजा करो आराधना करो कृष्ण की। आदौ सर्वेश्वर ज्ञान कृष्णेते हइ, सबसे पहले कृष्ण ही आदि सबके आदि स्वयं अनादि ये कृष्ण है, ऐसा ज्ञान है। वो समस्त ईश्वरों के ईश्वर है। अन्न देवे कभू नहीं अवज्ञा करिए और दूसरे देवताओं की अवज्ञा मत करो। भक्ति विस्तार छले अयोग्य शिष्य इत्यादि करके अपनी जनसंख्या इत्यादि वृद्धि करी देना। भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं क्या करें, भक्ति विस्तार मैं करूंगा, भक्ति का प्रचार करो खूब, खूब भक्ति का प्रचार करो। सब जगह आदमी भेज करके खूब प्रचार कर रहे हैं, कहते हैं ये ऐसा छल मत करो, प्रचार करो ठीक है, किंतु उसी के छल से शिष्य इत्यादि करके धन संग्रह करना और उस अभिमान में रहना और अपनी जनसंख्या वृद्धि करना, ये भक्ति का विरुद्ध है। ऐसा न हो, भक्ति का प्रचार हो, क्योंकि गीता में भी कहते हैं, भागवत में भी कहते हैं कि श्रद्धालु जनों को भक्ति विकसित करनी चाहिए। जो अश्रद्धालु हैं, जो लोग अश्रद्धालु हैं, जो संयम जिनमें नहीं है, गीता में अंत में कह रहे हैं न तपस्या, जो तपस्या जिनकी नहीं है, जिनका चित्त निर्मल नहीं है, ऐसे लोगों को ये ज्ञान मत देना, किंतु इसका प्रचार। भागवत में भी ऐसा कहते हैं, प्रहलाद महाराज जी स्वयं कहते हैं, जो अपने भजन करते हैं, प्रचार नहीं करते, दूसरों के लिए चिंतन नहीं करते, वो साधु नहीं। इसलिए अपना जो कल्याण करते हैं वो दूसरों का भी कल्याण करना चाहिए, किंतु लोग के वशीभूत होकर के लिए, कुछ तुच्छ चीजों के लिए ये सब व्यापक रूप में प्रचार करते हैं। हम भगवत भक्ति के लिए प्रचार क्यों नहीं करेंगे, किंतु उसके लिए, क्योंकि भागवत में कहा गया है सप्तम स्कंद में प्रहलाद महाराज जी वाले में, शिष्या नैवानुबंधनीया ग्रंथा नैव अभ्यासे अबहुं न व्याख्यान उपयुंजीत ना आरंभान भवेत पचित। जो कुछ भक्ति में कुछ ऊपर उठाए हैं, अब रुचि होने वाली है, उन लोगों के लिए कह रहे हैं। बहु शिष्य लोभे थे अयोग्य शिष्य करे, कुछ लोगों का अभ्यास हो जाता है वो शिष्य करने, इसलिए अयोग्य व्यक्तियों को भी शिष्य करने लगते हैं। तो बहु शिष्य लोभे थे अयोग्य शिष्य करे, भक्ति शून्य शास्त्र अभ्यास तर्क करी मरे, और बहुत ग्रंथों का अभ्यास करते हैं तरह तरह, किस लिए तर्क सीखते हैं बहुत ग्रंथों के। व्याख्या बाद बहु आरंभे वृथा काल जाए, व्याख्या बाद मैंने शास्त्र में वो नहीं लिखा, ग्रंथ तो रख दिया, सामने रख दिया, ग्रंथ खोला ही नहीं, न जाने कहां से उलूल जुलूल बातें लेकर के व्याख्या कर, मूल विषय में कुछ भी नहीं हुआ और 2 घंटा 3 घंटा बीत गए। हम लोग पाठ कर रहे हैं माने क्या, पूर्वाचार्यों की बात को भागवत की और औसत पर हम लोग अधिक से अधिक व्याख्या ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा साफ हो जाए, बस इतना ही जरूरत है, अधिक व्याख्या की जरूरत नहीं है, नहीं तो असल चीज रह जाता है और बारी चीज। किसी किसी को हमने देखा है ऐसा, ग्रंथ से कोई संबंध ही नहीं, उनके मन भीतर में जो फफोले हैं बस उसी को फोड़ने में लग गए आरंभ से। इसलिए ऐसा ना करके ग्रंथ में जो चीज है जो देना चाहते हैं ऋषि महर्षि हम लोगों के गुरुजन उसको ही करना चाहिए, उसमें जरा प्रकाश कर दिया जाए। इसमें ये व्याख्या बार अब बहु आरंभ है, ऐसा कोई चीज ना आरंभ करे, जैसे हमको जन्माष्टमी मनानी है, जन्माष्टमी के लिए 5 महीने पहले 10 महीने पहले प्रोग्राम बनाया और लग गए, और ऐसा हो गया कि भजन में मन नहीं लगता, बस उसी में ही लग गया, और जब जन्माष्टमी के दिन बहुत परिश्रम किया इसलिए भूखा रह गए, कुछ खाने नहीं से शरीर दुर्बल लगता है, कुछ खा पी भी लिया, खा लिया मैंने फल तल लिए सब ले लिए, तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है, और भगवान की कथा आलोचना नहीं हुई, लोग जब लाखों लोग आए तो उसके प्रीति नहीं आओ भगत नहीं वो सब चला गया और भक्ति रह गई रह। इसलिए इस सब चीजों को विचार करके करके चलना चाहिए। चार चीज बतला, शिष्य का अनुबंध न हो, अयोग्य शिष्य न हो, भक्ति सुन्न, भक्ति का जिन शास्त्रों में विचार नहीं है, जैसे वो योग वाशिष्ट और अष्टावक्र का कोई पुस्तक है, अष्टावक्र क्या ज्ञान की बातें कुछ हैं, वेदांत दर्शन के नाम पर बहुत से लोगों ने झूठ मूठ की कल्पनाएं करके ग्रंथ लिखे जिससे वेदांत का संबंध ही नहीं, विशेष करके ये रामकृष्ण मिशन में वेदांत के ऊपर बहुत हरिद्वार से भी, किंतु वेदांत जो असल जो व्यास जी ने प्रकाश किया और वेदों का सार भाग जो उपनिषद है उस पर विचार नहीं कर, संसार झूठा है, संसार कुछ है ही नहीं है, इसको वेदांत मान, ये वेदांत वेदांत है, भगवान की भक्ति ही वेदों का अंत है, ये लोगों में प्रतिष्ठित हो, भगवान के प्रति अनुराग हो, प्रीति हो, नाम में रुचि हो, ये वेदांत है। तो दो चीज हुआ, बहुत शिष्य नहीं, अयोग्य शिष्य नहीं, जिस शास्त्र में भक्ति की बातें नहीं है उसमें उसका पाठ न करें। व्याख्यावाद में ग्रंथों को के मूल उद्देश्य को छिपा न दें व्याख्या से के द्वारा, और बहु आरंभ ऐसा किया जो भक्ति का नाम निशाना नहीं रहा, बस आरंभ ही उत्सव उत्सव बस खाना पीना बस इसी में रह गया, मूल उद्देश्य हम लोग का साधित नहीं हुआ। इन चार चीजों से जारे नामी जार रुचि से ही सब सब नाचार, जिनको नाम में रुचि है इनसे दूर रहते हैं, नाम के रुचि वाले। तस्माद एक मनसा भगवान शाश्वतानुपति श्रोतव्य कृतव्य ध्येय पूज्य नित्यता, तस्माद एक मनसा एक भगवान, एक भगवान की अनन्य भाव भावेति करो श्रवण, अनन्य भाव से, अनन्य भाव से मैंने और दूसरा कोई भावना, बस भगवान में प्रेमा भक्ति बढ़े, भगवान में रुचि हो, नाम में श्रवण में कीर्तन में इसमें रुचि हो। इसलिए कीर्तन हम मानने की करते हैं, और इसलिए करते हैं कि लोग कहेंगे ये बहुत अच्छा कीर्तन किया है, इसलिए यदि कीर्तन किया तो भ्रष्ट हो गया, कीर्तन इसलिए हो कि हमारी उसमें रुचि हो, भगवान प्रसन्न हमारे पर, ये देखना है। तो अनन्य भावे ते करो श्रवण कीर्तन, नाम रूप गुण ध्यान कृष्ण आराधना, कृष्ण का नाम चिंतन और कीर्तन, रूप उनका चिंतन, गुण उनका चिंतन, ध्यान उनका चिंतन। कहते हैं कि पहले नाम एक कलिका है, कलिका मैंने एक पहले हुई लता, लता में पानी सिंचन करने से उसमें पत्ते आए, पत्ते के बाद में वो लता बढ़ती चली गई, बढ़ते 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 उसमें फूल आए, फूल के पहले कली होती है, नाम ये कलिका है। अब ये कली धीरे 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 विकसित होती है, तो पहले कली में सुगंध नहीं होता, कली में सौंदर्य नहीं होता, उसमें कोमलता नहीं, बड़ी कड़ी होती है कली। इसके बाद में धीरे धीरे वो विकसित कुछ होने लगती है। उस समय में पहले हुए भगवान का नाम यही करते 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 जब रुचि आने लग जाएगी तो वो नाम थोड़ा थोड़ा प्रस्फुटित होकर के उसमें रूप आने लग जाएगा। हमारे नन्नूमल जी एक कीर्तन करते हैं, उस कीर्तन में है कोई व्यक्ति यदि भगवान का रूप चिंतन कर रहे भी, रूप भी चिंतन न करे और उनका नाम करे तो क्या होगा?
सुमिरा नाम रूप गुण देखे,
रूप गुण देखे, नहीं देखा तभी तो वो खुद आ जाते हैं,
नाम की बाधे खींची आएंगे आखिर,
नाम के द्वारा वो खींच आकर के वो दर्शन देंगे। गधा हमने कहा, गधा गधा गधा, तो गधा का रूप आएगा कि नहीं होते, और यदि अधिक गधा का तो गधा का गुण भी तुम्हारे अंदर में आ जाए, वह नहीं है। उसी तरह से भगवान कृष्ण कृष्ण करने से पहले नाम हुआ, अब यही नाम निष्ठा और रुचि के अनुसार होने लगा तो भगवान का रूप कृष्ण कृष्ण करने से कृष्ण का आ जाए। बंसीधारी हैं, मोर मुकुटधारी हैं, वो पीताम्बरधारी हैं, चारों तरफ में सखा लोग सखियां लोग चारों तरफ में हैं, गोप स्त्री परिवेष्ट तो विजय दे गोपाल, ये उपाय अपने आप आएगा, फिर रूप आएगा, रूप के बाद में उनके गुण आएंगे, गुण के बाद में लीला परिकर और वो लीलाएं भी हृदय में उदित होने लग जाएंगे। इसलिए कहते हैं अनन्य भाव इति करो श्रवण कीर्तन, नाम रूप गुण ध्यान कृष्ण आराधन, संगे संगे अनर्थ नाशे यत्न करो, भक्तिलता फल दान करिबे स्वत्व, धीरे धीरे अनर्थ नाश की चेष्टा करो और ऐसे धीरे 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 नियम के अनुसार में करो, कुछ दिनों के बाद में भक्तिलता में फल एकदम थर पकड़ेगा। इसलिए ऊपर में कह रहे हैं तस्माद एकेन, पहले स्कंद में बतला रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को, उन्होंने कहा मुझको क्या करना चाहिए, यदि ऋषि लोग करें दान न करो, कोई कहता है पुण्य करो, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, मुझको क्या करना चाहिए, अब मेरे लिए मृत्यु 7 दिनों में और संभावी है, अब आप बतलाइए। तो कहते हैं कि जो मरने वाले हैं, जो आज मर रहे हैं, बिछड़ने पर हैं, जो सोए हुए मरने के लिए, उन सब के लिए तस्मात, इसलिए उस प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं तस्मात एकेन मनसा भगवान शास्त्रतानुपति, एकमात्र भगवान जो शाश्वत पति हैं हम लोगों के, चीर माने सदा के लिए, शाश्वतांग माने भक्तों के प्रिय भी होता है, और एक यहां तो शाश्वत माने नित्य का, हमारे जो पति हैं पालन पोषण करने वाले हैं वो भगवान जो कृष्ण हैं, उन्हीं के विषय में हमको सुनना है, श्रोतव्य सुनो, और कृष्ण उनका कीर्तन करो, नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करो, नहीं होता है केवल नाम का कीर्तन करो और ध्येय उन्हीं का स्मरण करो, ध्यान करो और पूज्यश्च उन्हीं की पूजा, एकमात्र भगवान की कृष्ण की पूजा, उन्हीं का विषय सुनो, उन्हीं का कीर्तन करो, उन्हीं की पूजा करो, उन्हीं की आराधना करो, सब कुछ बस एक इस समय में दूसरा करने की कोई जरूरत नहीं, कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगा, बस यही तुम्हारी रक्षा करेगी। भक्ति के सामने सिंधु में कहते हैं, यदि भजन करने की लालसा है और नाम में रुचि लाने की यदि इच्छा है, एक बात करो अलब्धे वा विनश्ये, भक्षा भक्ष साधने अविक्लव मतिर भूत्वा हरीर में उठिया स्मर। खूब अच्छी तरह से समझ बुझ कर देखो, अलब्धे, अलब्धे माने यदि कोई चीज भूख इत्यादि लगे, किसी चीज की जरूरत है तो तुमको वो नहीं मिली, अथवा मिल गई अथवा नष्ट हो, तीनों अवस्थाओं में, अथवा भक्ष आच्छादन साधने भोजन के लिए, आच्छादन माने कपड़े के लिए, मिल गया ना, और मिलने के बाद में फिर नष्ट हो गया, किसी भी अवस्था में अपने को दुखित मत करो, चित्त चंचल मत करो। अविक्लव मतिर भूत्वा, अविक्लव माने व्याकुल मत हो, घबराओ मत, एकदम शांत की तरह करके अपनी बुद्धि के द्वारा भगवान का स्मरण करो, वो आ जाएगा। क्यों? हमारा प्रारब्ध हो उसको मजा करो, और यदि नहीं मिलने वाला होगा तो तुम्हारा प्रारब्ध नहीं मिलेगा तो तुम किसी प्रकार से उसको नहीं पा। इसलिए इस सब विषय में निश्चिंत चित करा करके भगवान का भजन करो। भक्षाच्छादन यदि सहज है ना पाए, यदि सहज में भोजन नहीं मिल रहा है, अथवा पाया कोनो गति के है, अथवा मिलने पर भी वो नष्ट हो जाता है, जैसे श्रीमद् भागवत में त्रिदंडी भिक्षु का उपाख्यान है, उसके घर वालों ने उसे निकाल दिया घर से, निकाल देने के बाद में तफड़ाता हुआ इधर उधर घूमे, अंत में किसी साधु का संग मिला, वो साधु बन गया, त्रिदंडी वेश ले लिया, फिर नंद संन्यास, और सोचा जैसे उसी घर में जाएंगे, उसी गांव में जाएंगे जहां पर कि हम लोगों को निकाला है, अपना शत्रु समझ, बस अपने घर में परिवार में अपने गांव में जाकर के वो भिक्षा के लिए पा। उन्होंने कहा जैसे ये भंड बदमाश है, ये साधु का वेश लेकर के आए, बस उसकी झोली फाड़ देते, झोली में
थूक देते, धूल दे देते,
वो रोटी देने के बदले रोटी मांगने जाता तो थूक दे देते, कोई कुछ करते उसके ऊपर में थूक देते, धूल डाल देते, तरह तरह उसका दंड लेकर के खेच लेते, तरह तरह से करते, किंतु अविक्लव भूत्वा मतिर भूत्वा, किंतु उनको कोई चिंता नहीं, वो तो निश्चिंत होकर के बस भगवान का स्मरण करते। ऐसे ही हम लोग भी इस विषय सब में अविक्लव मुक्ति अटक, उसके लिए अधिक चिंता घबरा न करके कल क्या खाएंगे, आज ही से इकट्ठा करने लगे, परसों क्या खाएंगे उसके लिए चिंता करने लगे, ये हम लोगों को चिंता करने की जरूरत है। इसी तरह से ये सब शिक्षा दिए हैं, आगे कल का करेंगे हम लोग। आज हम लोगों को जैसे पेड़ में, पेड़ की जड़ में पानी देने से उसकी डालियों पत्तों और फूल और फले फल हरे भरे हो जाते हैं, इसलिए भगवान कृष्ण की आराधना करने से सबकी आराधना करनी हो जाती है और सब कुछ भरा हो जाता है, सब देवता लोग भगवान के अवतार और सभी जीव प्रसन्न हो सकते हैं उस भक्ति के द्वारा। जिस प्रकार से मुख में भोजन देने से समस्त इंद्रियों का भी भोजन करना हो जाता है, अलग अलग कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर बतलाया कि हरिरेव सदा आराध्य, कृष्ण ही एकमात्र जगत के आराध्य हैं। कुछ लोग अपनी कामनाओं वासनाओं के लिए दूसरे दूसरे देवताओं की उपासना करते, किंतु कृष्ण ही सब कुछ सब देवताओं लोगों को भी देने वाले हैं। एक बार की कथा है कि कोई एक संत सूफी
وہ بادشاہ اکبر کے پاس میں کچھ مانگنے کے لیے گیا. تو بادشاہ کے پاس میں گیا تو اس نے کچھ مانگا, تو بادشاہ نے آنکھ بند کیا اور بند کر کے آنکھ بند کر کے دھیان کر رہا ہے. تو جب دھیان کر لیا اور جب دینے کو ان کو ہوا کچھ جو مانگا تھا, تو ان کا جیسے پہلے آپ بتلائے یہ دھیان کر کے آپ کیا کر رہے تھے؟ میں اللہ کو بلا رہا تھا. کس لیے؟ کہ یہ چیز ہم میں نہیں دے سکتا, وہ اللہ آ کر کے ہم کو دیں گے تو تم کو دیں گے. تو نہ کہ ہم کو دلال کی ضرورت نہیں ہے, تو ہم ہی اللہ کا دھیان کریں گے وہاں سے وہ دے دے گا. تو ویسے ہی ہم کو دوسرے کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ وہ پربھو سے, کرشن سے. شنکر جی سے مانگیں گے, شنکر بھگوان کرشن سے مانگ کر کے تب تم کو دیں. درگا جی سے ہم مانگیں گے تو وہ کرشن سے مانگ کر کے تمہیں دیں. ہنومان جی سے کہیں گے تو وہ رام چندر جی سے کچھ مانگ کر کے دیں. تو کیوں نہیں ہم انہی کو ہی بھجن کریں؟ اس لیے دوسرے دیوتاؤں کے بھجن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کنتو یتھاجت تو ان کا آدر بھی کرو, اوگیا مت کرو. سب دیوتاؤں کو یتھاجت کے سمان دیتے ہوئے بھگوان ہی ہمارے آرادھ ہیں. وشیش کر کے برہما جی, برہما جی نا سکھدیو گوسوامی, سوت گوسوامی اپنے گرو جی کو پرنام کر اور بھگوان کو پرنام کر کے بتلا رہے ہیں سات ہزار رشیوں کو, اور ادھر سکھدیو گوسوامی بتلا رہے ہیں پریکشت کو. اس لیے کہتے ہیں تسمات ایکین منسا بھگوان شاشوتان پتی سو تبدی تبدیش دھیش پوجیش نتدا. اس لیے کیوں جتنے دیوتا دیوی سب ہیں وہ کرشن سے کرشن کی آرادھنا کرتے ہیں, اس لیے سب کو چھوڑ کر کے شاشوت پتی جو بھگوان کرشن ہیں ان کو ان کا ہی وشے سمن کرنا چاہیے, ان کا ہی نام کیرتن کرنا چاہیے, ان کا ہی سمرن کرنا چاہیے اور ان کی ہی پوجا کرنی چاہیے. جدی ہم لوگ چاہتے ہیں شدھ روپ میں نام ہم کو ہو, نام میں روچی ہو, تو اور انیہ دیوتاؤں کی پوجا کرنے سے بھگوان کے نام میں روچی نہیں. اس لیے کامنا واسنا سب پرکار کو چھوڑ کر کے ان کا ہی بھجن کرنا چاہیے. جدی چت چنچل ہو جائے گا تو بھگوان کا بھجن نہیں ہوگا. اس لیے کہتے ہیں البھے وا بناشتے بھکشاچھاد انسادنے اب وپلو متر بھوتوا ہری ریم ہری میں ویاس مری. البھے جدی کوئی چیز ہم کو پراپت نہیں ہے اتوا پا کر کے بھی اس کو نہیں ملی, جیسے روٹی بھوجن کپڑا اتیادی ہمارے پاس میں نہیں ہے, تو اس کے لیے چت چنچل ہو جاتا ہے. ہمارے پاس میں بھوجن کے لیے پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے, بھوجن کھانے کے لیے نہیں ہے. کہتا ہے ایسا مت کرو, جدی وہ چیز تمہیں پراپت نہیں ہے یا مل کر کے بھی وہ چلی گئی تو اس کے لیے اب وکلو متر بھوتوا ادھک اس کے لیے چت شانت مت کرو. تم ستھر چت ہو کر کے بھگوان کا بھجن کرو, تم کو جو چیز ملنی ہے وہ مل جائے گی, کسی پرکار کی اسویدھا نہیں ہوگی. جو بھگوان کا بھجن کرنے والا ہے اس کو کوئی چیز کی اسویدھا نہیں ہوتی, بھگوان اس کو پورا کر دیتے ہیں. ابھی ہم لوگوں نے کہا تھا نا جب وہ پالن جگت کا پالن پوشن کرتے ہیں ان کو ہی رکشک روپ میں ہمیں بنانا چاہیے, وہی جگت کا اور ہمارا رکشن کرتے ہیں. اس لیے کبھی بھی چت چنچل نہیں ہونا چاہیے کسی بھی وشے میں. شوکا مرسا آدی بھاوئی آکرانت جسیہ مانسم کتم تسیہ مکندسیہ سفورتی سمبھاونا بھوے. شوک अमर्ष, अमर्ष माने हिंसा ईर्ष्या इत्यादि के द्वारा जिसका चित्त सब समय मन आक्रांत है, शोक से, मोह से कोई चीज नष्ट हो गई, उसके लिए चित्त यदि चंचल है तो वो उसके हृदय में मुकुंद की स्फूर्ति नहीं हो सकती। चित्त चंचल है इसलिए जो जाना है वो जाएगा, आज जो नहीं जाना है वो नहीं जाएगी। भागवत में बतलाया गया कहीं चौक है बाजार, लाखों आदमी आ जा रहे हैं, वहां पर कोई चीज हमारी बहुमूल्य गिर गई, तो तुम एक घंटे के बाद में आओगे तो देखेगा जैसे वहां पर पड़ी हुई है, और तुम उसी चीज को यदि जानी है तो घर में आयरन चेस्ट में भी बंद करके रखो, वो चली जाएगी, उसको जाना है। जो चीज जाने वाली है वो जाएगी, जो रानी वाली है वो रहेगी। प्रहलाद चरित्र में कोई एक छोटा सा बच्चा है, नारद चले गए वन में, उनको पशुओं ने कुछ नहीं बिगाड़ा, और कोई महाबलवान व्यक्ति भी यदि वहां चला जाए ना तो उसको हो सकता है कि जंगल में उसको खा जाए सब शेर से, जैसे सतरा जी उसका भाई
प्रसेंजी
बहुत बलवान था, घोड़े पर चढ़ करके गया और उसको सिंह ने खा लिया, और सिंह को खा लिया भालू ने खा लिया, और छोटा सा बच्चा कोई चला जाए जंगल में उसको कोई देखने वाला नहीं।
ध्रुव महाराज गए, कोई
ध्रुव महाराज जी, प्रहलाद, वो नारद जी और सब लोग गए, उसको कोई कुछ नहीं करता। तो जो चीज जाने वाली है वो जाएगी, जो रहने वाली है, जो दुख आने वाला है वो आएगा। उसके लिए हम चित्त को क्यों विषण करें और चंचल करें, निश्चिंत चित्त से भगवान का भजन जो करेगा तो उसके हृदय में नाम। आज जो सब समय भविष्यत विपत्तियों के लिए जिसका चित्त चिंतित है तो वो क्या भगवान का भजन करेगा, इसलिए भगवान पर विश्वास रख करके भजन में अग्रसर हो। जावता स्यात् स्वनिर्वाह स्वीकुर्यात् तावत् अर्थवीत्। अर्थवीत् जो अर्थ के विषय में पंडित आदमी है और भगवान का भजन करना चाहते हैं, उनको अर्थ उतना ही उपार्जन करना चाहिए जिससे कि उनका जीवन निर्वाह हो जाए, अधिक मत करें, कम भी ना करें, जितना रहने से जीवन उसका निर्वाह हो जाता है बस भक्ति के लिए उतनी ही चीज की जरूरत है। अधिक करने से, हाय हाय करने से भक्ति नहीं हो सकती। सहजे जीवन यात्रा निर्वाह उपयोगी, द्रव्यादि स्वीकार करे भक्त नहीं भोगी। भक्त लोग भोगी नहीं होते, जितना जो चीज की जरूरत है बस उतने ही जरूर से मतलब है। अधिक संग्रह करने की, अधिक के लिए हाय हाय करने की उनको कोई भी जरूरत नहीं, बस जीवन निर्वाह के लिए जो शीत के कपड़े हैं बस वो, भोजन के लिए जो जरूरत है सब इसके लिए कर, और उसमें भी यदि नहीं मिलता भी है जैसे तैसे फटे बोरे तोड़े सब मिली जाएंगे, नहीं मिलेगा श्मशान में कपड़े पड़े हुए मुर्दा घाटियों में मिल जाते हैं, वो निर्वाह हो जाएगा, नहीं मिलता लकड़ी जला करके भी जीवन का निर्वाह हो। इसलिए भगवान का भजन मूल चीज बनाना चाहिए। हमें बोलते ग्यारह स्कंद में नौ जोगेंद्र संवाद में
बतलाया गया है, भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत चैस्त्रिक एक काल प्रबद्धमानस्य यथास्नत चातुष्टि पुष्टि कुदुपाये प्रपद्यमानस्य जो भगवान के शरणागत भगवान के चरणों में जो प्रपन्न है तथा कथित नहीं यथार्थ रूप में जो भगवान के चरणों में शरणागत और भगवान का भक्ति करना चाहते हैं तो भक्ति परेशानुभव साधन काल में भी भक्ति इतनी अच्छी है आनंददायक है। साधन भक्ति का ही हम यदि प्रारंभ करें भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति तो छोड़ दो, साधन भक्ति के समय में भी भगवान का नाम करने में भगवान की कथाओं को सुनने में भगवान का चिंतन करने में इतनी सुखदायी है वो साधन भक्ति होते होते ही भक्ति अर्थात सेवा या भगवान नाम करना या भगवान की कथाओं को सुनना ऐसा करने से साथ ही साथ साधन के समय में भी परेशानुभव परेश माने पर और अवर दोनों के जो ईश हैं जड़ चेतन सबके जो प्रभु हैं विश्व ब्रह्मांड के वो ईश का अनुभव अनुभव माने उनका ज्ञान अथवा साक्षात अनुभूति उनको होगी उतने परिमाण और अन्य विषयों में सांसारिक विषयों में विरक्ति होगी। भगवान की जहां भक्ति होगी कौन करेगा प्रपद्यमानस्य जो शरणागत जीव है वो यदि भगवान की भक्ति करेगा श्रवण कीर्तन इत्यादि नवधा भक्ति तो वो साधन भक्ति और साथ साथ में भगवान की अनुभूति ये सब करने की जरूरत नहीं है। जैसे यथा अश्नता जो भोजन करने वाला व्यक्ति है भोजन कर रहा है तो भोजन करते समय ही सुतुष्टि तुष्टि सु अर्थात उसकी तुष्टि हो जाती है। तुष्टि माने क्या जब खाएंगे ना तो खाने के साथ ही मैं खा रहा हूं अच्छा लगेगा
संतोष
संतोष होगा और पुष्टि शरीर में पुष्टि आने लगे और खुद पायो माने तो खुद माने खुदा ऐसी हो जाए और कोई चीज खाने की इच्छा नहीं करे प्रति ग्रास में खाने वाले व्यक्ति एक एक ग्रास खाएगा उसी के परिमाण में उसको तुष्टि पुष्टि और खुदा निवृत्ति तीन चीजें अपने आप हो। उसी प्रकार से जो भक्ति करेगा अपने आप आत्मा में आनंद होगा बतलाया ना सवई पुंसान परो धर्मो जतो भक्ति यथक खजे अहे तुक्य व्यवहिता जा भक्ति
नहीं
जात्मा संप्रसिद्ध आत्मा प्रसन्न हो जाती है संसार में वैराग्य अपने आप उसको हो जाएगा कोई विषय को लेने की ग्रहण करने की लालसा नहीं शरीर के जीवन के निर्वाह के लिए होगी कुछ जरूरत तो वो भी क्या करेगा कोस कोस करके कोस कोस माने क्या है मैं क्यों ले रहा क्यों ऐसा करता हुआ लेगा ग्रहण मुखे भोग इस प्रकार से करेगा सुख से नहीं अपने में है क्यों ले रहा हूं इस तरह से करता हुआ वो करेगा। विशेष करके देखो साधन भक्ति करते समय एक आदमी भगवान की लीला कथाओं को पढ़ रहा है कोई लीला कथा पढ़ने पर उसको समझते ही अर्थ बोध होते ही बड़ा आनंद होता है कोई भी श्लोक ले लो, प्रणत देहिनांग है, सबकथामृतम है, कोई भी श्लोक, अथवा आंखों की सार्थकता यही है, अक्षताम फलमिदम न परम पिता। आंखों की सार्थकता है, कृष्ण गोचारण के लिए जा रहे हैं, सखा लोग जा रहे हैं, सखा लोग बजा रहे हैं, कोई बंसी और कोई सिंगा, कोई कुछ बजा रहे हैं, कोई गायों को घेर रहे हैं, कोई बिलग्गी हंसी करते हुए चले जा रहे हैं, और बलदेव जी आगे चल रहे हैं, कृष्ण पीछे चल रहे हैं, कृष्ण बंजी बजाते हुए कटाक्ष भर नेत्रों से गोपियों की तरफ में या सखाओं की तरफ में देख करके मुस्कुरा रहे हैं। इसको देखा, इसका जो देखा, ये देखना ही उसकी आंखों की सार्थकता है। अब इसके कितने सुंदर सुंदर सब भावपूर्ण अर्थ। मान लें कि हम बद्ध हैं, किंतु इन कथाओं के सुनने से अब उस समय हम लोग लोक में नहीं रहते, एक दूसरे लोक में रहते हैं। उस समय आनंद होता है, उस समय में ऐसी सुंदर अनुभूति होती है जो संसार का विषय भोग धरा रह जाता है। उस समय खाने की भी इच्छा नहीं रहती, न पीने की भूख याद रहती। इसलिए प्रेमा भक्ति का यदि रागानुगा भजन है तो उस रागानुगा का साधन भी ऐसा ही आनंद युक्त है, और उसमें जो अनुभूति होती है, अनुभूति क्या होती है, ऐसे अनुभूति ना स्वप्न में भी अनुभूति यदि हो गई देखा तो भी आनंद। और अनुभूति उसको कैसे हुआ, परिक्रमा कर रहा है या हरि कथा सुन करके कहीं जा रहा है, और ऐसे ही झट उसको किसी न किसी रूप में अनुभूति हो जाएगी। और अन्य विषयों में विरक्ति हो, अब संसार का कोई भी विषय उसे अच्छा नहीं लगेगा, रुचकर नहीं लगेगा, संसारिक बातें उसको अच्छी नहीं लगेगी, किसी विवाह शादी में भी उसको जाना अच्छा नहीं लगेगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। भक्त जने सम माने जुगप उपदय जुगपत उदय भक्ति ज्ञान विरक्ति तीन ज्ञान होने चाहिए। ये समझो, साधन भक्ति करने से भक्ति ज्ञान और विरक्ति तीनों एक साथ होती है। कुछ लोग वैराग्य के लिए पृथक रूप से प्रयास करते हैं तो समझो जो भक्ति का विरोधी मत कर, वो अपने आप भक्ति करने से जो सहज रूप में होगा वही वैराग्य हम लोगों के लिए लाभदायक, उसी को युक्त वैराग्य पर। अपने आप भजन करने से उसको भागवत तत्व का ज्ञान भी होगा, ज्ञाने प्रयास मुदपाश्य, भगवान की कथाओं लीलाओं को सुनने से भजन करने से अपने आप भगवत तत्व का ज्ञान होगा। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए, उसे तीनों चीजें एक साथ में होगी, चिद अचिद ईश्वर संबंध ज्ञान। ज्ञान ज्ञान किसको कहते हैं, चित क्या है, अचित क्या है, समस्त चितों में भी जीवात्मा श्रेष्ठ है, उन जीवात्माओं से भी श्रेष्ठ है भगवान परमात्मा, इसको कहते हैं ज्ञान। आप कृष्णेतर कृष्णेतरे अनाशक्ति विरक्ति प्रमाण, और भगवान का भक्ति से संबंध जिस विषय में नहीं है उसमें उसकी रुचि ही नहीं लगेगी, इसको कहते हैं विरक्ति वैराग्य। ये तीनों चीजों एक साथ में होती हैं, अलग अलग नहीं। नैतन मनस्तव कथा विकुंठनाथ संप्रियते दुरित दुष्ट असाधु तिब्रम कामापुरम हर्ष शोक भय क्षणार्थम तस्मिन कथम तव गतिम न एतत् मन तव कथासु विकुंठ। हे विकुंठनाथ, हे प्रभो, आपकी कथाओं में उन लोगों का मन नहीं लगता है। किन लोगों का? दुरित दुष्ट असाधु ब्रह्म। हमारा मन कैसा है? नाना प्रकार के पापों से भरा हुआ, काम क्रोध लोभ मद मोह ये सब दुरित है और दुष्ट है और असाधु ब्रह्म। साधुता का विपरीत हमारा हृदय है, इसलिए मेरा मन आपकी कथाओं में नहीं लग रहा है। यदि हमारा पाप दूर हो जाए, असाधुत्व दूर हो जाए, तो भगवान की कथाओं में रुचि। ये दूर कैसे होगा? ये दूर होगा भगवान की कथाओं के सुनने से, भगवान नाम कीर्तन करने से, साधु संग में भगवत स्मरण इत्यादि से ही हो सकता है। मेरा मन कामातुरम, हर्ष शोक भय एशनार्तम, एशना आर्तम, एशना माने काम, तरह तरह की कामनाओं से हमारा मन आर्त हो रहा है, दुखी हो रहा है, तरह तरह की कामनाएं, और वो कामनाएं पूर्ति नहीं हो रही, इसलिए मन बहुत आर्त है। कब मिलेगा? और कामातुरम, काम में आतुर है, काम माने भोग वासना इत्यादि काम, और हर्ष शोक के बसी, थोड़ा सा कोई जगत में कुछ हो जाता है, लॉटरी मिल गई तो खूब आनंद, विवाह हो गया तो आनंद, लड़के का जन्म हो गया तो बहुत आनंद, मन के अनुकूल कुछ हो जाने पर महा आनंद, आनंद नहीं हर्ष। आनंद होने से तो भगवान का सेवा करने से आनंद, भजन करने और क्षण में ही सो, इसका चित्त इन कारणों से, इन विषयों से भरा पड़ा है। भगवान के नाम में, भगवान की कथा में, भगवान के स्मरण में उनकी रुचि नहीं। लोग कहते हैं हमारी रुचि नहीं हो रही, कारण तो दूर करें, कारण दूर करें हम यदि तो ऐसा हो सकता है। तो तस्मिन कथम गतिम विमिशामि दीन। हे प्रभु, मैं अत्यंत दीन हूं, मैं इनको छोड़ना भी चाहता हूं किंतु मैं छोड़ नहीं पाता, मैं क्या करूं? यदि आप कृपा करें तो इन चीजों को छोड़ सकते, अन्यथा नहीं छोड़ सकते। दुरित दूषित मन, असाधु मानस, हमारा मन अत्यंत असाधु है। काम हर्ष शोक भय एस नार्वर तव कथारती किसे हईबे अमार, किसे कृष्ण तव लीला करीब विचार। जब तक ये सब लालसाएं हृदय में हैं, तब तक लाख कोई चेष्टा करे इन सब में रुचि नहीं आएगी, और इन लोगों का छोड़ना भी बड़ा आसान नहीं है। यदि नहीं हो रहा है तो अभी निरंतर ऐसा करना चाहिए, निरंतर भगवान का नाम कीर्तन, रुचि नहीं होने पर उनकी कथाओं का सुनना, और सबसे अधिक साधु संघ में ये सब दूर होता है, जिन साधु संघ में ये सब चीजें नहीं है। प्रहलाद महाराज जी के उपाख्यान में कहीं कहा गया है, जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं एक व्यक्ति को सात स्त्रियां हैं, छह स्त्रियां, अथवा एक व्यक्ति को छह स्त्रियां हैं, अथवा एक स्त्री के छह पति हैं, वो एक ही बात हुई ना? एक स्त्री के छह पति हैं, अथवा एक पति के छह स्त्री हैं, वो जैसे वो अपने अपने वशीभूत पति को करना चाहती हैं, ऐसे ही हमारी छह पत्नियां हैं, उन पत्नियों से भी भयानक। हे अच्युत, जिह्वा हमारी पहली पत्नी है, जिह्वा। जिह्वा रसना के वशीभूत होकर के तरह तरह की चीजों को आस्वादन करना चाहती, एक तरफ में खींच रही है जिह्वा। और शिष्ण और अधिक खाने से हृदय में काम होगा तो काम अपने तरफ में खींचता है, पेट अपनी तरफ में खींचता है। पेट भर गया है तो भी यदि कोई चीज अच्छी मिल रही है तो और भी खाते 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 एकदम गला तक खा करके फिर उसी को उल्टी करेगा, किंतु खा लेगा पूरा, पेट नहीं भरता, वो अपनी तरफ में खींच रहा है। और चर्म, ये त्वचा जो है अपने तरफ में खींच रहा है, किस लिए? नरम गद्दा चाहिए, नरम कोमल चादर चाहिए, अतच शीत उसमें ठीक से चली जाए, अच्छे अच्छे कोमल और भोग विलास युक्त ये चीजें हो सके,
कोमल स्पर्श,
सज्जा अच्छी, सज्जा अच्छे, कपड़े अच्छे, सब चीज होना चाहिए, ये चाहता है। बहुत से ऐसे प्राणी हैं जो इन्हीं के लिए अपना प्राण दे देते हैं, मनुष्य सबसे अधिक
छह
अच्छा, और जितने छ पांच का नहीं है सब ये सब है। और श्रवण क्या चाहता है? मीठी मीठी बातों को सुनना चाहता है, हमारे लिए जो उपकारी कड़ी बातें हैं उसको सुनना नहीं चाहता, बड़ी मधुर मधुर बातें जिससे कि हमारा भजन बिगड़ जाए ऐसी बातें सुनना चाहता है। आजकल घर में ऐसी बातों को अपने देश से भी काम नहीं चलता तो विदेशों से भी खबर सुनने के लिए घर के ऊपर में छाता लगाते हैं, छाता जानता है?
पच्चीस हजार
में वो लगता है, उसमें देश विदेश के जितने भी मधुर बातें होंगे उसमें आसानी से सहज रूप में जिन लोगों के पास पैसे हैं ना वो सब लोग आजकल लगा रहे हैं। इसलिए हम लोग घर में टीवी और क्या क्या लगा रखा है। और घ्राण, घ्राण माने नाक, अच्छी अच्छी सुगंध सूंघने के लिए अपने तरफ में खींच रही है। और चक्षु, रूप देखने के लिए अपने तरफ में खींच रही है। कर्म इंद्रिय माने चक्षु, बाक पानी पाद उपाय, अर्थात बाक माने बोली, बाक पानी हाथ, और पैर पायु और उपास्थ, ये अपने तरफ में खींचते हैं। बहु पत्नी जाता जिस प्रकार से बहुत सी पत्नियां अपने अपने तरफ में खींचती, कहीं भागवत में इसका प्रसंग आया ये बहुत पत्नियां अपने अपने तरफ में खींच रही हैं, आदमी मर गया, धृतराष्ट्र अपने पूर्व जन्म में चित्रकेतु जब हुए तो सब स्त्रियां देखी ये अपने पति को हम वशीभूत नहीं कर सकते हैं, इसको लड़का हो गया इसीलिए इसने अपने पति को अपने तरफ में खींच लिया, तो सोचा जो हम लोगों को इच्छानुसार में लड़का तो पैदा हम नहीं कर सकती जो राजा का दृष्टि आकर्षण करे, उसके लड़के को मार सकती हैं, बस
सीप में दूध मिला करके और उसमें कालकूट जहर मिला करके उसको दे दिया, लड़का मर गया।
वो केवल कारण यही था कि राजा थोड़ी सी उपेक्षा करता था और उपेक्षा उसे सहन नहीं हुई। जितने अनर्थ अधिकांश होते हैं ऐसे ही अनर्थ होते हैं। यदि पहले से वो लोग भगवान का भजन करते और जो कुछ मिल गया उसी से संतुष्ट रहते तो हो जाते। आजकल अधिकांश लोग मर रहे हैं आत्महत्या कर, कोई थोड़ा सा भी कष्ट हो गया सहन नहीं करेंगे, सहेंगे नहीं, विष खा लेंगे, फांसी लगा लेंगे। यहां तक कि पढ़ी लिखी लड़कियां भी, पढ़े लिखे लोग भी, उनकी बुद्धि काम नहीं करती। अरे तुम घर से निकल करके जहां तहां कहीं कहीं भजन तक कर सकता था, प्राण देने की क्या जरूरत है? इसलिए कभी भी प्राण देने की कोई चेष्टा मत करे आत्महत्या न करके। यदि वो अनुकूल परिस्थिति नहीं है तो हम जहां से रह करके जैसे तैसे भगवान का भजन कर सकते हैं। जहां रहेंगे जरूर मिल जाएगा भोजन, किसी न किसी रूप में भोजन अच्छा नहीं मिल जाएगा। कुत्ते गधों को मिल जाता है तो हमारा भरण पोषण नहीं होगा, ऐसा तो विश्वास रखना चाहिए। किसी भी स्थिति में प्राण त्याग करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो और विपत्तियां हो जाती हैं। एमत अवस्था मोर नक्षी नंदनंदन, ऐसी अवस्था में हे नंदनंदन मैं क्या करूं? ये किसी को एक दो होती है, हमको ये सभी चीजें हैं। प्रभु आप कृपा करें जिससे मैं आपका भजन कर सकूं, चित्त चंचल न हो। सबसे बड़ी बात यह है बिना बुलाए दुख आता है, कभी कोई दुख नहीं चाहता दुख आ जाता है, तो सुख भी यदि होगा तो बिना बुलाए क्यों नहीं आएगा? इसलिए बुद्धिमान पुरुष इसके लिए चेष्टा नहीं कर, वो सब समय समस्त इंद्रियों के द्वारा भगवान का भजन कर। इसलिए ऐसा सोच करके भगवान का तन मन सब प्रकार से उनका भजन करना चाहिए। जैसी स्थिति आती है उसी के अनुकूल अपने को ढालकर तो उसी में संतुष्ट रहे। इस प्रकार का व्यक्ति हरिनाम कर सकता है, उसको धीरे 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 अनिश्चितता से निश्चितता भक्ति होगी और अंत में उसको रुचि उत्पन्न हो जाएगी। इस तरह से उसका भजन सार्थक हो जाएगा। आज यही तक बंझा कल
भवे अत्र वानत्र तु वा चिरस्याम्
जिनाम्ह अहम् एकोऽपि भवत्यनारम् भूत्वा निषेवे तव पादपल्लवम्। तदस्तु मे न। ये कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी। कब कह रहे हैं? जब भगवान की महिमा का अंत नहीं पाया, वो नहीं समझ सके, कुछ भी विचार नहीं करने में समर्थ नहीं हुए। किसकी माया से ये सब हुआ ने? किसकी माया से ये इतनी बाल बाल और बछड़े और फिर इधर भी उधर भी ये सब हुए और साथ ही साथ में सब चतुर्भुज हो गए और थोड़ी देर के बाद में एक कृष्ण रहे बस। एक कृष्ण हो जाती है, एक ही कृष्ण रहे और बाकी सब मूर्तियां गायब हो गई और कृष्ण माँ के सूखे हुए मुंह और बच्चों को ढूंढ रहे हैं और गोपालों को ढूंढ रहे हैं, गायब बच्चों को ढूंढ रहे हैं, अज्ञ बन गए। उनकी इस स्थिति को देख करके ब्रह्मा जी पुनः पुनः प्रणाम कर रहे हैं और स्तव और स्तुति करने लग गए। वही कह रहे हैं तदस तुमे नाथ सभूरी भागो भवे अत्र वानत्र तु वा चिरस्थम। कहते हैं तत अस्तु मीनाथ, हे प्रभो अत्र माने इस वृंदावन में अथवा अन्यत्र कहीं भी विश्व में हमारा जन्म हो, इससे हमको कुछ भी आपसे प्रार्थना नहीं कर।
लिखे
दिए जल पूछ लगे दिल। तो इस वृंदावन में मेरा जन्म हो चाहे अन्यत्र कहीं भी जन्म हो, चाहे मैं यहाँ पर घात जन्म लूं, पशु पक्षी कीट पतंग जन्म लूं, मुझको जो दुख और सुख हो वो सब हो, हमको इसके लिए चिंता नहीं। जीना अहम एको भवत जना गुप्त्वा, बस आप लोग आपके भवत जना नाम माने आपके जो भगवत भक्त हैं, आपके जो भक्त हैं प्रेमी जन, उनका मैं कुछ हो करके उनका कुत्ता बनूं, उनका कोई पक्षी बन जाऊं, उनकी गाय बनूं, उनका लड़का बनूं, बस उन्हीं के संग में उन्हीं के संबंधी हम कुछ बन जाए, चाहे कुत्ता भी होना पड़े तो उन्हीं का, और आपके चरण कमलों के भी सेवा कर सकूं, बस यही चाहते, उनकी कही हुई हरि कथा सुन सकूं, आपके धाम में जा सकूं, यही सब हमारी कामना है। बस कहीं भी हमारा जन्म हो, कोई भी आपत्ति नहीं, आपके भक्तों का संबंध में हमारा कोई जन्म हो, एक ब्रह्म जन्म ही वा अन्य को भवे, इस ब्रह्म जन्म में मैंने ब्रह्मा ब्रह्मा कह रहे हैं, इस ब्रह्म जन्म में अतः तो ब्रह्मा नहीं हूं, अथवा कहीं अन्य पृथ्वी में मेरा जन्म हो जाए, पशु पक्षी है जन्मी तुम्हार भी भवे, पशु पक्षी के रूप में भी हमारा जन्म हो, तो केवल मात्र बस यही प्रार्थना और आशा है कि भक्तों के संग में हमको मिले, बस यही, और उन्हीं लोगों के संग में रह करके आपके चरण कमलों की मैं सेवा कर सकूं। कैसे करेगा, उसको सुयोग मिल जाएगा सेवा का, भक्तों के घर में कुत्ता भी होंगे तो उनका प्रसाद सेवन करने के लिए मिल जाएगा, ठाकुर जी का प्रसाद मिल जाएगा, अंदर तो पत्ता भी फेंक देंगे तो चाट करके जीवन निर्वाह करने का सुयोग मिल जाएगा, बाकी पशु पक्षी होकर तो अच्छा है, लठिया भी खा लेंगे किंतु अपराध नहीं कर पाएंगे, उनकी निंदा नहीं करेंगे, पुरुष होने में साधन भजन करने में यदि होगा तो कुछ डर भी है, जब किसी प्रकार से अवज्ञा कर दिया निंदा कर दिया, किंतु उनमें डर नहीं, इसलिए पहली अवस्था में तो वैसा ही जन्म हो, और फिर जब कुछ बुद्धि शुद्धि हो जाए, सुकृति अधिक हो जाए तो वैष्णव का संग हमें मिले, जिससे कि हम लोग उनके जैसे तैसे आदेश को भी हम लोग पालन करें। प्रभुपाद जी ने कहा ना, जब वैष्णव का आदेश या गुरु जी का आदेश पालन करने के लिए हमको यदि कोटि कोटि नरक में भी जाना हो तो कॉन्ट्रैक्ट करके हम कॉन्ट्रैक्ट मैंने क्या दे करके चुप्पि पत्र दे करके भी हम ऐसा करें, जैसे ब्रह्मा जी ने और भी बहुत से कौ किए हैं, इसमें से हम लोगों के अनुकूल रुचि होने के लिए यही चाहिए वैष्णव का संग। आज यदि किसी को वैष्णव का संग मिल गया तो उसको क्या करना चाहिए, प्राण के समान अपना बंधु मान करके उनके साथ में भगवत भजन करने की चेष्टा करनी चाहिए, नहीं तो ये यदि गया तो हमारा जीवन का सर्वस्व चला गया, फिर ऐसा नहीं मिलेगा। कुन ईश थे पाद सरोज भाजन सुदुर्लभो अर्थेशु चतुष्वपी तथा नाम प्रविणो भी घूमन भवत पदाम्बोध निषेव उत्सुक निषेवेनो उत्सुक। ये सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित जी को कह रहे हैं, और परीक्षित महाराज जी को पूर्व की कथा में कह रहे हैं तृतीय में, कोनो ईश ते पाद सरोज भाजन, जिन लोगों की भगवान के चरणों में भक्ति है उन लोगों को कौन ईश ते पाद सरोज भाजन सुदुर्लभो पदार्थ, चारों चार प्रकार के अर्थ हैं मनुष्य के, धर्म अर्थ काम और धर्म एक अर्थ है, धर्म माने क्या, वर्णाश्रम माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, सच बोलना, ये सब चीज है। ये एक अर्थ है। इस अर्थ से क्या होता है, ये अर्थ मिलता है धर्म अर्थ। अर्थ माने रुपया पैसा, ये घर और सब चीजें जो जितने प्रकार की, ये सब चीज। इसलिए एक अर्थ ये, पहले धर्म होगा तब फिर ये मिलेगा धर्म अर्थ। इसके बाद में जितनी प्रकार की तुम्हारी कामनाएं उस अर्थ के द्वारा पूरा होगा धर्म अर्थ काम। किंतु फिर इसे होगा क्या, फिर अब जो काम जो हुआ वो काम फिर धर्म कराएगा, फिर धर्म से फिर अर्थ होगा, और अर्थ से फिर काम होगा, फिर काम से, ऐसे ये तीनों घूमते रहेंगे। इसी को कहते हैं त्रिवर्ग। इसे ऐसा ये 99 का फेर है कि कभी कोई निकल नहीं सकता। जिधर से निकलने की चेष्टा करो फिर घूम फिर करके
उलझ जाएगा,
उसी में उलझ जाएगा, दलदल है। किंतु कोई सौभाग्यवान जी कुछ लोगों की संग से वो इनसे निकल जाते हैं, किंतु मुक्ति रूपी अर्थ में फंस जाते हैं। धर्म अर्थ काम और अंत में है मोक्ष, ये भी अर्थ है। अर्थ मैंने ये परमार्थ का आधा कुछ पाना जाता है, अर्थ है ये मुक्ति होना जन्म मरण से, ये कम नहीं है और तीर्थार्थ से। किंतु यही अंतिम सीढ़ी नहीं है, यहां से आरंभ होता है यथार्थ परमार्थ। वो भक्ति है पंचम पुरुषार्थ, कृष्ण प्रेम है पंचम पुरुषार्थ। तो कहते हैं कि इस संसार में भक्तों के लिए ऐसा कौन पदार्थ है चारों में से, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो उनको नहीं मिल सकता है। उनके लिए कोई भी चीज उधर चाहे ना तो अर्थ मिल जाएगा, चाहे तो उनको सब कुछ मिल जाएगा। एक लड़का गरीब घर का मठ में आया, मान लिया कुछ दिन रहा, अच्छा कीर्तन करने लगा, भगवान की कथा भी अच्छा तरह से बांचने लगा। कुछ धनी घर के कोई माता पिता और लड़के देखा, जैसे हमारी एक लड़की है, यदि इसका इसके साथ में विवाह कर दे, मतलब वो कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि हमारा उस वंश में धनी घर में हमारी शादी होगी। और घर वाले चाहते हैं जैसे इसको लाखों रुपए भी दे करके, और उस लड़के से इसकी बड़ा लड़का जुड़ गया, भगवान का भजन करता है और शांत चित्त से, बस देखा जे सुंदर सुकांत भी है, बस उसको किसी प्रकार के पास सुन करके उसको विवाह दे करके विराट धनी भी हो गया, जो कि ऐसे सहज रूप में ना। तो भक्त यदि चाहे ना तो ये भी हो जाएगा। धर्म तो कर ही रहा है वो, काम यदि वो भक्त लोग चाहे ना तो बड़े बड़े धनी लोगों के घर में जो भोग की सामग्री नहीं है, आजकल साधुओं के घर में वो सब सामग्री जाकर के देखें आसानी से उनको, वहां पर गृहस्थ लोग जिसके लिए कामना करते हैं उनको नहीं पूरा होता है। और उनके यहां भोग, उनके यहां 50 गायें, 100 गायें, 10,000 गायें उनके आश्रम में पल रही है, मक्खन और छाना और ये सब इधर उधर फेंका जा रहा है। घर में देखेंगे कि कैसे पलंग, कैसे क्या क्या उनके बने हुए, यदि चाहे तो उसको भोग सकता, नहीं तो उसको छोड़ करके ऊपर में चला जाएगा, यदि उसी में लग गया तो वही मिल। तो भक्तों के लिए वो भी सहज है। मुक्ति, मुक्ति एक नाम के द्वारा ही, नवाभास से ही मुक्ति उसकी हो जाती है। बड़े बड़े मुक्त लोग, बड़े बड़े चेष्टा करके ज्ञानी लोग और मुक्ति नहीं पाते, और ये चुटकी बजाते ही एक हरे कृष्ण छींकते समय कर दिया और आभास से ही उसको मुक्ति। किंतु कृष्ण प्रेम भाई सहज नहीं है, ये बड़ा मुश्किल वाला है। किंतु साधन करने से ये भी पाया जाएगा भक्त। इसलिए कह रहे हैं कि जगत के लिए ये अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये चारों चीजें बड़ी दुर्लभ हैं, किंतु भक्तों के लिए चुटकी बजाते हैं ये सब अनायास ही मिल सकती हैं। तथा पिना हम प्रबिणों में। हे घुमन, आप सब कुछ देने में संबंध अल्प में सुख नहीं है, सुख कहाँ है? घुमा पुरुष में, उनकी आराधना में ही सुख है, इसलिए भगवान को कृष्ण को घुमा पुरुष कहा गया। विष्णु से ही घुमा पुरुष आरंभ होते हैं और उनके ये फैक्शंस हैं, अंश हैं ये घुमा पुरुष। कर्णाधिशाही विष्णु को भी घुमा पुरुष कहते हैं, गर्भदशाई को कहते हैं विष्णु तत्व, ये सब घुमा पुरुष। और इनके मूल हैं कौन? कृष्ण। तो कृष्ण के जो भजन करने वाले हैं वो कहते हैं, प्रभो ये चारों चीज आप अनायासी दे सकते हैं और देते हैं और हमको भी करेंगे, लेकिन कि तो हमको इसे कोई भी जरूरत उनको उल्टा उनके तरफ में देकर के ऐसे कहते हैं, ये हमको नहीं चाहिए, बहुत घृणा के साथ ना, ना हम प्रमोण ओमी भूमन भवत पदाम्बोध निषेवणो उत्सुक। हम तो आपके चरण कमलों की सेवा करने के लिए उत्सुक हैं, हम इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं, ऐसे भी आप लोग रहेंगे बहुत प्रतिष्ठा आएगी। अभी साधन की अत्यंत निम्न श्रेणी में लोग कहेंगे जी अरे बहुत बड़ा साधु हो गया, प्रार्थना करेंगे जो हमको तुम कुछ आशीर्वाद दे जाओ, अरे मैं साधु नहीं, तब कहेंगे तुम कह दो वो हो जाएगा, बड़ा आदर करेंगे लोग। और धर्म और अर्थ और मोक्ष ये सहज चीज नहीं, ये भी हाथ जोड़ करके तुम लोगों के पास में आएंगी, किंतु खबरदार सीधी तरह से निगाह से इनके तरफ देखना मत, इसी जीवन में सबको पास। तरह तरह के लोभ आते हैं इस जगत, मोह आते हैं, सारा जीवन एक बूढ़ा आदमी सारा जीवन अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, नाती के लिए सब किया, किंतु घर वाले छोड़ेंगे नहीं, अंत तक चाहे 100 वर्ष के भी हो तभी छोड़ेंगे नहीं। अरे तू घर में यहां पर बैठा रहेगा तो भी कुत्ते टूते या चूहे टूहे बिल्ली तो नहीं आएगी, तू पहरा देगा तू घर में बैठा रहो, अंत तक नहीं छोड़ेंगे संसार वाले। किंतु हम इतने बुद्धिमान हैं कि हम गुरु वैष्णव और शास्त्रों की बात नहीं सुनते, हम उन्हीं के मुंह में पढ़ करके उसी में लग जाते, अरे सारा जीवन तो कमाया किया दिया सब, अब उसमें से थोड़ा सा समय लेकर के सवेरे शाम भगवान का तो भजन कर, वो लोग नहीं करने देंगे, किंतु तुम लोग करो, बुद्धिमान हो तो भजन करो। तस्वैव हेतु प्रेयेत कोविदो न लभेत जत भ्रमताम उपर यद लभ्यते दुखवत अन्नतः सुखम कालेन सर्वत्र गंभीर अंगसार। प्रथम स्कंद में ही कह रहे हैं, सुख गोस्वामी जी कह रहे हैं, तस्वैव हेतु इसलिए, देखो कोई भी दुख नहीं चाहता किंतु दुख बिना बुलाए आ जाता है, दुख को कोई निमंत्रण नहीं देता तो भी बिना बुलाए अतिथि होकर के वो आ जाता है और उसको प्रणाम करके दूर भगो तो वो सुनेगा नहीं, सिर पर चढ़ करके जबरदस्ती भोगा देगा। तो यदि सुख भी होगा तो अपने आप आएगा, उसके लिए चेष्टा करके तुम मर क्यों रहा है, जब दुख के लिए कुछ नहीं करता तो भी आता है, तो सुख भी यदि होने को होगा जरूर होगा। जहां तुम रहोगे वन जंगल में भी रहोगे जहां भी रहोगे दुख सुख जरूर आएगा, इसलिए तस्य वह तो इस हेतु से प्रजजे तो कोविदो, कोविदा मैंने
पंडित गण,
जो कोविदो अच्छी तरह से जो जानने वाले हैं समझने वाले हैं अनुभव करने वाले हैं उनको पहले और बीच का और सब इतिहास इत्यादि को देख सुन करके, रामायण महाभारत और सब शास्त्रों को देख करके, गीता देख करके, भागवत देख करके, उपनिषदों को देख करके विचार करना चाहिए, विचार करके अनुभव के साथ में इन चीजों के प्रति अपना मोह तोड़ सब छोड़ना चाहिए। एक श्रीमद् भागवत में उपाख्यान दिया, एक थी बकरी कि बकरा था,
बकरा
वो अपनी बकरी को छोड़ करके वो दूसरी बकरी ढूंढने लगा। तो वो बकरी, वो बकरा जब गया था एक कुएं में, एक बकरी गिरी हुई थी, तो वो मैं भे कर रही थी, तो ये सुन करके ये वहां पर पहुंच गया बकरा। जब पहुंच गया तो उसने देखा जो उसमें वो रो रही है, दिलाप कर रही है, तो उसने उसको सहायता दे करके उठा लिया। तो उसने कहा जैसे यदि हमको उठा लिया तो हम अब आपके साथ नहीं रहे। पहले सूत्र में रुक गई। एक दूसरी थी वो इसे कुपित हो गई, जो पहले वाली इसकी स्त्री, वो कुपित हो गई। अब वो दोनों के फेर में पड़ गया। बहुत रोचक कथा उसमें दी गई है। अंत में क्या हुआ, अपने पिता के पास में बकरा बकरी थी, वो अपने पिता के पास जाग गई और उसने कहा जैसे ये हमको छोड़कर के दूसरी के पास में चला, आप समर्थ हैं, आप इसको दंड दीजिए। उसने कहा तुम नामर्द बन जाओ। तो वो नामर्द बन गया। नामर्द माने क्या, अब संतति उत्पत्ति करने का शक्ति नहीं है। अब बड़ा दुखी हो गया, अब अपनी स्त्री के पास जाकर के फिर बेमे करने लग गया। फिर वो खुश होकर के अपने पिताजी से कहा अरे आप पिताजी इस पर कृपा कर दीजिए, कहा जैसे तुम अपने लड़कों का उम्र ले और तुम अपनी बुढ़ापा दे दो। उसने लिया 10,000 वर्ष तक उसका भोग, एक लड़के ने नहीं दिया तो उसको अप्रसन्न होकर के उसको त्याग दिया। 10,000 करने के बाद भी उसको संतुष्टि नहीं हुई, बल्कि जैसे आग में घी दिया जाता है और जैसे लपटे उठने लगती हैं, ऐसे ही दुख की लपट और सब उसको भोगना पड़ा। श्रीमद् भागवत में छल से, कल से, बल से, उपदेश के माध्यम से ऐसी चीजों को दिया गया है जो रोज संसार में हो रहा है, और तभी हम लोग देख सुन करके भी नहीं कुछ। इसलिए बुद्धिमान पुरुष क्या करेंगे, इसीलिए संसार में सुख नहीं है। जो लोग संसार में सुख खोजते हैं वो समझें कि मृग मरीचिका में कहीं भी पानी नहीं है। इसलिए इस जगत में जो शांति और सुख खोजते हैं उनके जैसा मूर्ख और कोई नहीं है, उस बकरे के समान है मूर्ख या बकरी के समान। तो भी भागवत इतना गाली देने पर भी हम विचार उसके मुंह में फंस जाते हैं। इसलिए को भी अर्थात बुद्धिमान पुरुष इसको अनुभव करें और न लभे जब क्षमता ऊपर ऊपर और नीचे घूम रहे हैं 84,00,000 प्रकार की योनियों में, कभी दरिद्र कभी धनी, कभी अमीर कभी देवता, कभी यक्ष कभी मनुष्य, कभी गरीब कभी धनी, इसी प्रकार से कभी पशु कभी पक्षी कभी मनुष्य, इस प्रकार से जन्म। सुख की आशा नहीं मिटती, छाया की तरफ में सुख भागता जाता है, अब मिला अंत तक नहीं मिलता। अब हम ही लोग विचार करें जिस जन्म में हम लोग को क्या सुख मिला, अब तो बूढ़े हो गए, अब मरने का दिन आया, अब उसमें क्या सुख मिलने वाला है, क्या चीज इसमें जो हमने कमाई थी अपने साथ लेकर के जाए। जब विचार करते हैं इसी के लिए, जो विचार करते हैं उनको कोविद कहा गया, जो कि जानने वाले हैं अनुभव के साथ। इसलिए न लभ्यते ऊपर और नीचे जाने का ये जो है 84,00,000 प्रकार के योनियों में भ्रमण करके तीर्थार्थ के द्वारा दग्ध होता है, उसको छोड़ करके कालेन सर्वत्र गभीर अंभसा, अर्थात 14 लोकों में जो सुदुर्लभ धन है वो है भक्ति, बस इसी के लिए प्रयत्न करें और किसी चीज के लिए प्रयत्न न करें। भगवान का भजन करें, भगवान के भजन करने में कोई भी कष्ट नहीं है, सहजी रूप में भगवान का नाम ले सकते हैं, अपना घर का काम है करो, किंतु भगवान का भजन मत छोड़ो, फिर ऐसा सुयोग जीवन में कभी भी नहीं आएगा। बिना जतने दुखेर घटना जिनो है, ऐसे जो बताया, बिना किसी प्रचेष्टा के हम लोगों को दुख आ जाता है। सुख भी अपने प्रारब्ध के कर्म से जरूर आएगा, सुख जा भी रहो। एक लाला बाबू थे, आज से करीब 200 वर्ष पहले, बंगाल के थे। एक दिन कहीं वो जा रहे, वो एक नदी के किनारे पहुंचे, उनको नदी को पार करना है। अब अंतिम खेवा था, अब इसके बाद में खेवा बंद होने वाला था। अब वो कहता है कि शाम हो गई, माने अब खेवा नहीं जाएगा, ये अंतिम खेवा है, जिसको जाना है वो आकर के बस पार करके चले जाओ, नहीं तो खेवा बंद हो जाएगा। शाम हो गई, इन्होंने कहा कि सचमुच में शाम हो गई, हमारे आयु की शाम हो गई, हमारे जीवन की शाम हो गई, ये तो कह रहा है साधारण रूप में, किंतु हमारा जीवन अब ढल चुका है, अब आयु अब थोड़ी सी है, बस वहां से घर बार छोड़ करके बिंदा कर, घर में कुछ भी नहीं लिया, एक पैसा भी कुछ नहीं लिया, किंतु वो जो संग्रह की जो प्रवृत्ति है और बुद्धि और कौशल है वो कहां जाए। वृंदावन में आए तो कुछ दिन में ठाकुर जी की प्रतिष्ठा कर दी, और वृंदावन का आधार मथुरा का भी बहुत भार, जमींदारी इन्होंने बढ़ा दी, अभी लाला बाबू की बड़ी संपत्ति ये सब थी, अब कुछ दिनों में ये सब धीरे 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 बेच रहे हैं, तो वो छोड़ करके तैयार, तो फिर उनको संपत्ति और धन और ये सब कहां छोड़ा, उन्होंने कुछ कुछ भगवान के भजन में लगा लिए, किंतु रूप सनातन ने वो भी नहीं किया, ये परम बुद्धिमान, ये को भी नहीं। लाला बाबू तो कुछ फंस गए किंतु ये लोग नहीं फंसे, इसलिए कहते हैं से भक्ति जन्न जत्न करे बुधगण। इसलिए पंडित बुद्धिमान जो है, पढ़ने लिखना कहीं पंडित और बुद्धिमान नहीं होता, अनुभव से आदमी होता है, अपने बुद्धि की स्थिरता से, इसलिए सोच विचार कर, इस विषय में हम स्वतंत्र हैं, कर्म का फल भोगने के लिए स्वतंत्र होने पर भी स्वतंत्र ही सब कर्मों के लिए हम लोग स्वतंत्र हम कर सकते हैं। यान प्रति तंभितांतोपाद पद्म ध्यानात् भवत् जन कथा श्रवणी नवास्यात् सा ब्रह्मणी स्वम महिम्नपि नाथमाभूत् किम बद अंत काल से लुलिना पतिता विमाना। यह ध्रुव जी का चरित्र का है, ध्रुव जी के संबंध में प्रार्थना भगवान से करें, कब कर रहे हैं, जिसमें भगवान उनको दर्शन दिया और देशम 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी के समस्त भोगों को तुम भोग, ये कह करके जब अंतर ध्यान हो गए तो अब उनको बड़ा सुख, अरे है मैंने क्या किया, ये सब कुछ देने वाले प्रभु से मैंने ये संसार की ये बेकार की चीजें हमने मांगी, अब तो हाय हाय करके रोने लगे। उस समय मैं ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रभु तो पद ध्याने भक्त मुखे तव कथा समणे जे सुख तहा मांगे सर्वता ब्रह्म सुख नाही भालो लागे मोर मोने की छार अनित्य लोक सुख संघट है। आपने जो हमें 36,000 वर्ष के लिए ये अचल भोग हमको दिया, समस्त पृथ्वी का एक छत्र राज्य दे दिया, किंतु हमको ये तनिक भी अच्छा नहीं लगता, हमारे मन में तनिक भी सुख और शांति नहीं दे रहे, बल्कि और दुख उत्पन्न कर, जो 36,000 वर्ष हमारा बिता जाएगा इनके भोगने में, बिना भोगे तो नहीं जा सकते, यदि छोड़ देंगे वो भी संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा वर दिया, भगवान ने ही वर दिया है, उस वर को तो मिथ्या तो हो नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि आपके चरणों के ध्यान में ज्ञान निवृत्ति जो सुख आनंद मन शरीर को धारण करने वाले को आपके चरण कमलों के ध्यान से जो सुख मिलता है और त्रिलोकी में कहीं नहीं, विषयों से कभी भी सुनो। हम लोगों को उनके बातों पर विश्वास रखना चाहिए।